दूसरा इतिहास अध्याय 14। 14वें अध्याय में हम अबिय्याह की मृत्यु और उसके बेटे आसा के राजगद्दी पर बैठने के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 14 पद 1 से लेकर 4 तक। निदान अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा और आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने तो पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नाम मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञाओं को माने। आपको याद होगा कि जब रहुबियाम राजा बना तब उसने परमेश्वर को त्याग दिया था और अपनी प्रजा को भी परमेश्वर से दूर ले गया। वो मूर्ति पूजा में लीन हो गया। उसने उपासना के लिए वृक्ष कुंज लगाए थे, देवी देवताओं के लिए उसने वेदियां भी बनवाई। अब अबिय्याह ने भी यही किया। उसने परमेश्वर की उपासना के साथ साथ देवी देवताओं की आराधना की। यद्यपि परमेश्वर की आराधना यरूशलेम में की जाती थी, प्रजा को पूरी छूट थी कि वो देवी देवताओं की पूजा करे। आसा ने राजकाज संभालते ही आत्मिक सुधार किया। उसने सब मूर्तियां तोड़ डाली और इन देवी देवताओं की जितनी भी वेदियां थी सब ढा दी। उसने वृक्ष कुंज नाश कर दिए, परंतु वे ऊंचे स्थान जहां लोग उपासना के लिए इकट्ठे होते थे उन्हें नाश करने से वो चूक गया। अध्याय 14 पद 5। और उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा, परंतु वो पूरी तरह सुधार न कर पाया। उसने कुछ उपासना स्थल छोड़ दिए थे जैसा कि हम आगे देखेंगे। अध्याय 14 पद 6। और उसने यहूदा के गढ़ वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा। और तब पद 7 में उसने कुछ विकास कार्य किए। अध्याय 14 पद 8। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से 300,000 पुरुष और बिन्यामीन में से फरी रखने वाले धनुधारी 280,000, ये सब शूरवीर थे, 580,000 थे। अध्याय 14 पद 9। और उनके विरुद्ध 1,000,000 पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नाम एक कूशी निकला और मरेशा तक आ गया, अर्थात 1,000,000 कूशी उसके विरुद्ध आ गए। अध्याय 14 पद 9 से 11 तक। 300 रथ लिए हुए जेहर नाम एक कूशी निकला और मरेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मरेशा के निकट सपाता नाम तराई में युद्ध की पांक्ति बांधी गई। तब आसा ने परमेश्वर यहोवा की यो दोहाई दी। अब यहां आप ध्यान दें, एक ओर तो 680,000 की सेना है और दूसरी ओर 1,000,000 से अधिक सैनिक खड़े हैं, साथ ही इनके पास 300 रथ है। अब ऐसी स्थिति में अपनी सेना को तैनात करके उसने एक बड़ी बुद्धिमानी का कार्य किया। उसने परमेश्वर को पुकारा, हे प्रभु, हमें तेरी आवश्यकता है, परिस्थिति हमारे विरुद्ध है। जब भी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो तब परमेश्वर का अपनी ओर होना अच्छा होता है, परमेश्वर को पुकारना अच्छा है। जब आपको ये बोध हो कि आप में युद्ध का सामर्थ्य नहीं है तब परमेश्वर को पुकारना उचित है। अतः आसा ने अपने प्रभु परमेश्वर को पुकारा। अध्याय 14 पद 11 में आगे लिखा है कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य का सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। ये जानते हुए कि परमेश्वर को एक बड़ी सेना की आवश्यकता नहीं है, ये जानते हुए कि परमेश्वर के लिए सहायता करना कोई बड़ी बात नहीं है, सहायता करने में परमेश्वर को कोई हानि नहीं, चाहे आपकी समस्या किसी भी प्रकार का क्यों न हो, परमेश्वर उसे संभाल सकता है। सहायता करना परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं। हम तो कहते हैं, ओह ये समस्या तो बड़ी है, ये तो बहुत कठिन है, ओह ये असहनीय है, परंतु परमेश्वर के लिए ये कुछ भी नहीं है। हम समस्याओं को मानवीय सीमाओं में रहते हुए देखते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ है तब हम कठिनाई के बारे में बात ही नहीं कर पाएंगे। हे प्रभु, यदि तू सहायता करे तो ये कुछ भी नहीं, चाहे संख्या बड़ी हो, चाहे किसी में सामर्थ्य ही ना हो। ये वैसा ही है जैसा परमेश्वर के लिए कैंसर को कान दर्द के समान चंगा कर देना। समस्या तो हमारे मन में अवस्थित परमेश्वर की धारणा है, क्योंकि हम परमेश्वर को अपनी मानवीय सीमाओं में बांध देते हैं। हम प्रायः परमेश्वर को मानव रूप में देखते हैं। हमें परमेश्वर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे वो हमारे समान मानव है और हम अपनी सीमाएं परमेश्वर के चारों ओर खींच देते हैं। ये हम सबके साथ सच है। मुझे तो अंतर नहीं पड़ता कि आप कितने ही आत्मिक क्यों न हो, आप में से हरेक ने परमेश्वर के कार्यों पर सीमा निर्धारित की है। यदि एक व्यक्ति जिसका बाजू नहीं है आकर आपसे कहे, मैं युद्ध में था, वहां बम फटने से मेरा एक बाजू कट गया, क्या आप कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे फिर से ये बाजू दे दे? सीधे हाथ के बिना मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, मैं चाहता हूं कि सब प्राचीन इकट्ठे होकर मेरे लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर मेरे लिए एक नया हाथ दे दे। हम उससे अवश्य ये कहेंगे, प्रिय भाई, परमेश्वर के लिए भी असंभव नहीं है। और उसके बाद फिर हम अपना तर्क रखना आरंभ कर देंगे, क्यों परमेश्वर नया हाथ नहीं दे सकता है? इसका कारण सीधा सा ये है कि मेरे मन में परमेश्वर मनुष्य के समान सीमित है, क्योंकि शायद मैंने कभी नहीं देखा कि परमेश्वर ने किसी को नया हाथ दिया हो। इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर ऐसा नहीं करता, इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं कर सकता। यदि कोई उस पर विश्वास रखे, परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। यदि हम केकड़े का पैर तोड़ दे तो उसका नया पैर फिर से उग आता है। हम केकड़े को पकड़कर उसका पैर तोड़कर छोड़ देते थे कि उसका नया पैर निकल आए और हम उसे फिर पकड़े। ऑक्टोपस की भी एक भुजा काट दी जाए तो वो फिर से उग आती है। ऐसे ही केंचुए के शरीर को काट दिया जाए तो वो फिर से उग आता है। क्या परमेश्वर मनुष्य से अधिक केंचुए से प्रेम करता है? वो केंचुए के लिए सब कुछ कर सकता है तो मनुष्य के लिए क्यों नहीं करेगा? क्या वो स्टार मछली को आपसे अधिक प्रेम करता है? यदि उसके टुकड़े कर दिए जाए तो प्रत्येक टुकड़ा फिर से नया जीव बन जाती है। मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना तो करता हूं कि परमेश्वर उनके हाथ या पैर को नया कर दे, परंतु मैं पूरे विश्वास से ये नहीं मानता हूं। यदि कोई मेरे पास आकर ऐसा निवेदन करे तो मैं उस पर उपकार करने के लिए प्रार्थना कर दूंगा। मेरे मन में ये विश्वास कभी नहीं होगा कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। मैं उसे ये समझाऊंगा कि परमेश्वर क्यों ऐसा नहीं करेगा। सच तो ये है कि परमेश्वर के लिए ये काम उतना ही आसान है जितना कि किसी पाँव के घाव को ठीक करना। यदि परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा आपके सिर दर्द को चंगा कर सकता है, तो वो उसी शक्ति के द्वारा आपको नया पैर या नई भुजा या अन्य कुछ भी बड़ी आसानी से दे सकता है। कठिनाई परमेश्वर के साथ नहीं है, कठिनाई तो हमारे साथ है, क्योंकि हम अपनी मानवीय सीमाएं परमेश्वर पर डाल देते हैं। जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। अध्याय 14 पद 11 में आगे लिखा है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, ये उसकी विनती थी। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि उसकी पूरी प्रार्थना में एक ही निवेदन था, हमारी सहायता कर। शेष सब परमेश्वर के नाम का भरोसा करना, उसकी महानता का अंगीकार करना, उसकी महिमा के गुणगान करना था। वो ये सब तो परमेश्वर से कहता है, परंतु एक ही निवेदन करता है, हमारी सहायता कर। अध्याय 14 पद 11 में आगे लिखा है, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। विश्वास की इस स्थिति में आ जाना आसान नहीं है, परंतु कई बार जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो आप बाध्य होकर ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। यदि ये तू ना करेगा तो ये असंभव है। मेरी क्षमता के परे ऐसी स्थिति में आ जाना प्रायः होता नहीं, और इस कारण मैं परमेश्वर पर सदा निर्भर नहीं करता। ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक मेरे पास कोई और रास्ता है, तो मैं प्रयास करता रहूं। यदि कोई संभावना है या मेरे मस्तिष्क ने रास्ता खोज लिया है, तो मैं कहता हूं ये ठीक है, कोशिश करते हैं। इस प्रकार सामान्यतः मैं परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहता, जब तक कि मेरे पास कोई रास्ता बचा ना रहे। जब मुझे पूरा विश्वास हो जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब मैं परमेश्वर के पास आता हूं, और तब भी मैं निश्चिंत होकर परमेश्वर पर निर्भर नहीं करता। मैं बीच बीच में चिंता करने लगता हूं या फिर उत्तेजित होने लगता हूं। एक पास्टर ने मुझे फोन किया। वो किसी एक स्कूल की बोर्ड की बैठक में जा रहे थे। उनकी कलीसिया बहुत अच्छा विकास कर रही थी। उनके पास लगभग 1000 सदस्य थे, जिसके कारण उन्हें जगह कम पड़ रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक स्कूल को खरीद लें जिसकी पेशगी अग्रिम धन लगभग 4 करोड़ रुपए उन्हें उस बैठक में देना था। वहां ऐसा हिसाब था, यदि आप कोई स्कूल खरीद रहे हैं तो पूरा पैसा निश्चित समय में देना पड़ता था। इसके कारण वो पास्टर चिंतित था कि 90 दिन के भीतर वो ये पूरा पैसा कैसे दे पाएंगे। मैंने उनसे कहा, प्रिय भाई, प्रभु में विश्वास रखो, क्योंकि जैसे तू प्रभु सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। क्या उसने 4 करोड़ रुपए दिए? क्या उसने प्रबंध किया? जी हां। तो परमेश्वर के लिए क्या समस्या है? परमेश्वर को कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे वो 4 करोड़ हो या 4 रुपए। उनकी चिंता का कारण था कि यदि वे अग्रिम दन देकर पूरा पैसा ना दे पाए, तो परमेश्वर के लोगों का पैसा डूब जाएगा। मैं समझ सकता था कि उनकी मनोव्यथा क्या होगी। उन्हें परमेश्वर पर निर्भर होने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी धन राशि दाव पर लगाना आसान नहीं था। वो कलीसिया को क्या उत्तर देते? आप लोगों को क्या कह सकते हैं? प्रभु ने हमें ये स्कूल खरीदने में मार्गदर्शन दिया और अब हमारा साथ छोड़ दिया। हमारे पास शेष धन राशि का प्रबंध नहीं हो पाया, इसलिए हमारा धन डूब गया। किसी युवा पास्टर के लिए ऐसी स्थिति में आना आसान नहीं, और ना ही किसी वृद्ध पास्टर के लिए। परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखना इतना कठिन क्यों है? परमेश्वर पर आश्रित रहना इतना कठिन क्यों है? जब हमने अपने आराधनालय के लिए 10 एकड़ जमीन का अनुबंध किया था, तब भूमि के मालकिन से हमारा सौदा 3,50,000 रुपयों में तय हो चुका था। परंतु हमारे पास केवल 67,000 रुपए थे, अतः हमने उसे पूरा पैसा देने के लिए समय ले लिया। मैं जब जब घर लौटते समय वहां चौराहे पर हरी बत्ती की प्रतीक्षा करता तो उस 10 एकड़ जमीन पर मेरी निगाह पड़ती और मैं आतंकित हो जाता और कहता, चक, तुम इन लोगों के लिए क्या कर रहे हो? सब कुछ ठीक चल रहा है, सारे बिल दिए जा चुके हैं, तुम 3 बार आराधना कर रहे हो, सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास बैंक में जमा पैसा है, परंतु देखो तुम क्या कर रहे हो? तुम 10 एकड़ का अनुबंध कर रहे हो, ये तो आरंभ है। एक बार जब जमीन मिल जाएगी तब करीब 10 लाख तो आराधनालय बनाने में लगेंगे और 5 लाख से अधिक सड़क विकास में। तुम क्या कर रहे हो? यदि सारा खेल खराब हो जाए तो क्या होगा? मैं वहां बैठकर पसीने से भीग जाता था और खाली पड़ी जमीन को देखता, क्योंकि शैतान मेरे मन में उलझन पैदा कर देता था। मेरा विश्वास करे वो ऐसा ही करता था। तब परमेश्वर मुझसे बात करता और कहता, ये किसका चर्च है? मैं कहता, तेरा प्रभु। वो कहता, फिर तू क्यों चिंतित है? मैं कहता, पता नहीं, मैं विजयी होता और मैं प्रभु की स्तुति करता हुआ आगे बढ़ जाता। ये तेरा चर्च है, यदि सारी प्रक्रिया डूब गई प्रभु तो तेरा चर्च डूब जाएगा। मेरा मतलब, मैंने अपना बोझ उसके कंधों पर डाल दिया, क्योंकि मैं उसे उठा नहीं सकता था। वो कहेगा, किसने समस्या पैदा की? तुमने समस्या पैदा की, तो फिर ठीक है, ये मेरा भार है। हां प्रभु। अतः मैंने उस निराश जवान पादरी से कहा, ये चर्च किसका है? उसने कहा, ये परमेश्वर का चर्च है। ठीक है, ये चर्च परमेश्वर का है, तो ये समस्या किसने पैदा की है? क्या तुम ऐसे विल्शन उपदेशक हो कि लोग तुम्हें सुनने आते हैं? नहीं, तो फिर ये समस्या की सदस्य बड़े किसने पैदा की? प्रभु ने की है। ठीक, मैंने कहा, ये उसका उत्तरदायित्व है, ये चर्च उसका है, तुम क्यों चिंतित हो? हमारा भरोसा तुझ पर है प्रभु। ऐसा करना सदा सहज नहीं है, परंतु जब हम भरोसा करते हैं तब ये सदा ही आरामदायक होता है। मुझे ये पद बहुत सुहाना लगता है, जब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखने की स्थिति में आ जाता हूं, जब मैं उत्तेजित होना बंद कर देता हूं, जब मैं चिंता करना छोड़ देता हूं, जब मैं सब कुछ परमेश्वर पर डालकर कहता हूं, डूब जाऊं या पार लगूं, प्रभु अब ये तेरा काम है, मैं तो केवल तुझ पर ही निर्भर रहूंगा, बस तुझी पर आश्रित रहूंगा। परमेश्वर हमें अपने प्रयासों के अंत में ले आता है, जिससे कि हम उसमें भरोसा रखना सीखें, हम उस पर यहां तक निर्भर हो जाए कि हमें बुरे से बुरे परिणाम की भी चिंता ना हो। अगर हम डूब भी जाएं, तो ये प्रभु ही की कलीसिया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एस्तर ने कहा, एस्तर 4:16, यदि नाश हो गई तो हो गई, मेरे विचार में इससे अधिक और क्या हो सकता है, परंतु ये उसका काम है, उसका चर्च है, मैं तुझ पर आश्रित रहूंगा, तुझ ही पर प्रभु। आप जानते हैं, परमेश्वर के पास ऐसे तरीके, मार्ग और विचार है जो हमने सपनों में भी नहीं सोचे। मैं अपने को ये दिलासा दे रहा था, ये जमीन की अच्छी खरीदारी थी, हम 5 एकड़ से भी कम चला सकते थे, क्योंकि 5 एकड़ से अधिक हमें जरूरत भी नहीं थी। हम 5 एकड़ जमीन बेचकर उस लागत से आराधनालय बना सकते थे। मेरी कलीसिया के सदस्य मुझसे अधिक विश्वासी निकले और कहने लगे, नहीं, हमें पूरी 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। मैंने कहा, हमें 10 एकड़ की आवश्यकता है भी नहीं। मेरा कहना, बड़ी बड़ी बातें ना करें, परंतु वो 5 एकड़ जमीन ना बेचने के विवाद में वे विजयी हुए हैं। और प्रभु ने कुछ ऐसा कार्य किया कि इस भूमि का एक कोना उसकी पूरी मूल्य के आधे में ही बिक गया। एक तेल की कंपनी ने 75 लाख रुपए में उस भूमि का कोना खरीद लिया। इस प्रकार परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा। प्रति सप्ताह वो हमारे लिए इतना इंतजाम कर देता था कि हमारे सारे मजदूर काम करते रहे। अतः आराधनालय का निर्माण पूरा हो जाने तक खर्चा चलता रहा। परमेश्वर के कार्यों को होते देखना उत्साह देने वाला होता है, परंतु परमेश्वर पर आश्रित रहना उससे अधिक उत्साह देने वाला होता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अनुभव था जो मैंने जीवन में पाया। वहां मैंने परमेश्वर पर आश्रित रहना सीखा, क्योंकि मैं जानता था कि ये काम मेरे पहुंच से बहुत दूर है और वो अब भी मेरी पहुंच से बाहर है। परंतु चिंता न करें साथियों, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। मैं इस कार्य को संपन्न करने की सोच भी नहीं सकता। ये परमेश्वर का चर्च है, उसका कार्य है। मैं एक सेवक हूं। मैं इस कार्य को स्वयं पूरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं उस पर आश्रित हूं, क्योंकि वो अपने चर्च को बनाने के लिए अद्भुत रीति से कार्य करता है और उसके कार्यों को देखना उत्साह प्रदान करता है। हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। अध्याय 14 पद 11 में आगे लिखा है, और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ या सेना के विरुद्ध आए हैं। प्रभु, हम तेरी ओर हैं। आज के मसीह कार्यक्रमों में ये कितना विपरीत होता है। जहां हम पहले अपने कार्यक्रम निर्धारित कर लेते हैं और तब कहते हैं, परमेश्वर हमारी ओर हो, इस कार्यक्रम को आशीष दे जो हमने तैयार किया है। कितनी बार हम अपने आप को इस स्थिति में रखते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर हो। मैं चाहता हूं कि प्रभु तू मेरी ओर हो, मेरे पीछे रहे परमेश्वर, जो भी मेरे कार्यक्रम है उनमें मेरी सहायता कर और मेरे आदेशों को ध्यान से पूरा कर, ताकि प्रभु हमारा कार्यक्रम असफल न हो जाए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू ऐसा करे, और प्रभु जब तू शीघ्रता से मेरा ये काम पूरा कर ले, तब तू वापस आकर इस काम को भी पूरा करना। हम प्रार्थना को परमेश्वर के लिए आदेश समझते हैं कि वो जगह जगह में घूमकर मेरी इच्छा पूरी करे। ये प्रार्थना करने का गलत तरीका है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं चाहा कि प्रार्थना द्वारा पृथ्वी पर आपकी इच्छा पूरी हो। यह गलती लोग प्रार्थना के संबंध में करते हैं। वे सोचते हैं कि प्रार्थना ऐसी बात है जिसके द्वारा जो हम चाहें मिल जाता है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ हो तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ओह, क्या यीशु ने नहीं कहा, यूहन्ना 14:13, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। उसने फिर कहा, यूहन्ना 16:24, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। उसने आगे कहा, मती 21:22, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। क्या ये यीशु के वचन नहीं है? क्या उसने ये हमारे लिए प्रतिज्ञा नहीं की? हां, परंतु उसने ये प्रतिज्ञा किससे की थी? जब उसने ये कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तब वो किससे बात कर रहा था? जब उसने कहा, जो कुछ विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा, वो किससे बात कर रहा था? क्या वो भीड़ से बात कर रहा था? नहीं, तो फिर वो किससे कह रहा था? वो अपने चेलों से कह रहा था, जब उसने उन्हें प्रार्थना करने के बारे में ये महान प्रतिज्ञा दी थी। यीशु का चेला होने के लिए क्या करना होता है। मत्ती 16 अध्याय 24 पद, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु किससे कह रहा है? मांगो, कुछ भी मांगो। वो उन मनुष्यों से कह रहा है जिन्होंने सबसे पहले अपने आप का इनकार किया है, इसलिए वो स्वयं के बारे में नहीं सोचते थे, स्वयं को नहीं देखते थे, स्वयं के लिए नहीं मांगते, क्योंकि उन्होंने स्वयं का इनकार किया था। वे उन लोगों से बात कर रहा था जिन्होंने संपूर्ण रूप से कहा, लूका 22 अध्याय 42 पद, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो उन लोगों से बात कर रहा था जो पूरी तरह उसके पीछे हो लिए थे, जिन्होंने अपने आप का इनकार किया था और स्वयं को पूरी तरह परमेश्वर पर छोड़ दिया था, और जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में आनंदित होते थे। उसने कहा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जैसे मैं चाहूं मांग सकता हूं, ताकि मैं बहुतायत का और वासना पूर्ति का जीवन जी सकूं। इसका अर्थ है मैं परमेश्वर को इतना समर्पित हूं कि मैं अपने लिए नहीं देखता और ना चीजों की चिंता करता हूं। मैं जो केवल परमेश्वर के राज्य के कामों की चिंता करता हूं, मेरा मांगना परमेश्वर के राज्य से संबंधित होता है कि खोई हुई आत्माएं जो मेरे चारों ओर है, परमेश्वर उनके हृदय में कार्य करे, अर्थात मेरे समाज में रहने वाले जीवनों में कार्य करे। परंतु हम प्रार्थना का गलत अर्थ लगाते हैं कि परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार स्वयं को ढालेगा, कि मेरी मांगों को जो मैं प्रार्थना में करूंगा पूरी करे। ऐसा नहीं होता। प्रार्थना का उद्देश्य सदा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना होता है, ना कि अपनी। इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी तुम मांगोगे वो सुनेगा। यदि वो सुनता है तो तुम्हारी विनतियों को जो तुमने उसके सम्मुख रखी है पूरी होती है। परमेश्वर की इच्छा निश्चय ही आपकी प्रार्थना में शामिल होती है, और आपकी प्रार्थना उसकी इच्छा को बदल नहीं सकती। यदि उसकी इच्छा बदले तो परिणाम भयंकर होगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए अति उत्तम है। इस अवस्था में परमेश्वर की इच्छा सबसे उत्तम है। परमेश्वर की इच्छा आपके बच्चे के जीवन में सबसे उत्तम है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो कोई मन मौजी व्यक्ति नहीं है जो अपनी मनसा से टल जाए और आपकी बेतुकी या उठपटांग प्रार्थना का उत्तर दे, क्योंकि आप आगे की पूरी कहानी को नहीं जानते कि क्या होने वाला है। आप सीमित दृष्टि से संकीर्ण दृश्य देख रहे हैं, घटित ना होने वाली चीजों को नहीं देखते जिस पर परमेश्वर कार्य कर रहा है। इसलिए आप परमेश्वर को नहीं जानते, गड़बड़ा जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप नाश हो गए। परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। मैंने उसके कार्यों पर पूर्णतया विश्वास और भरोसा किया, परंतु उसने मेरा काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है कि वो आपकी इच्छा पूरी करे, और ना ही प्रार्थना का उद्देश्य ऐसा होता है। प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। अध्याय 14 पद 11 के अंत में लिखा है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। मेरी स्थिति ठीक ऐसी ही थी। प्रभु, ये तेरा चर्च है और मैं तुझ पर आश्रित हूं। ये तेरा चर्च है प्रभु, अपने चर्च को कुछ होने ना देना। अपने चर्च को दिवालिया होने से बचाना, अपने चर्च को गिरने ना देना। तेरे नाम से प्रभु हम आए हैं। मनुष्य मुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। परमेश्वर ने हमें दिवालिया होने से बहुत दूर रखा, क्योंकि हमने उसकी प्रभुता को स्वीकार किया है। हमने स्वीकार किया है कि उसका चर्च है, और हमने स्वीकारा है कि जब वो पैसा देता है तब हम पैसे को उसकी इच्छा और उद्देश्य के अनुसार व्यय करते हैं। वास्तव में सदस्यों के ऊपर धन राशि को उचित तरीके से व्यय करने का भार होता है, जिसको परमेश्वर ने खुलकर हम पर भरसाया है। इसलिए हम रेडियो सेवा में आए हैं। हमने महसूस किया कि ये अच्छा रास्ता है जो परमेश्वर ने खोला है कि संपूर्ण राष्ट्र में उसके कार्यों का वर्णन किया जाए, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने यहां किया है वो उसके वचन की शिक्षा के द्वारा ही हुआ है कि लोग उसके वचन में मजबूत हो जाए। उन्होंने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर ने हमारे काम को बढ़ाया और आशीषित किया है, क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन की ओर फिरे हैं, वास्तव में परमेश्वर को जानने लगे और परमेश्वर से जुड़कर उन्होंने अर्थपूर्ण संबंध बना लिए। उनके जीवन में उसके कार्यों का आरंभ हो गया। हमने परमेश्वर के वचन के फल देखे, इसलिए सबसे उत्तम हमने ये चुना कि पूरे देश में वचन रेडियो पर प्रचार करके फैलाया जाए। रुचिकर बात तो यह है कि हम जब भी रेडियो सेवा को बढ़ाने के लिए कदम उठाते और धन खर्च करते, परमेश्वर और अधिक धन भेज देता है। हम परमेश्वर के साथ चल नहीं सके, हम पूरा धन खर्च नहीं कर पाए, इसलिए हम रेडियो सेवा को बढ़ाने में लगे रहे। अब हम दूरदर्शन का विचार कर रहे हैं, ताकि दूरदर्शन के द्वारा लोगों तक पहुंचा जाए। हम और तरीके भी ढूंढ रहे हैं कि उस धन के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है देश भर में लोगों के पास पहुंचा जाए। हम लोग बड़ा धन लगाकर संगीत मनोरंजन के द्वारा लोगों तक पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं। इसमें काफी पैसा लगेगा, परंतु हम हजारों लोगों तक पहुंच पाएंगे और इस क्षेत्र में जवानों पर असर डाल पाएंगे। हम उन माध्यमों को ढूंढ रहे हैं जिसमें वो धन जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है बुद्धिमानी से लगाया जा सके, ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को पूरी दुनिया में बढ़ावा दे सके। जब परमेश्वर मार्गदर्शन करता है तब सब आवश्यक चीजें भी देता है। परमेश्वर अगुवाई करता है कि स्वर्ग के राज्य के बढ़ावे के लिए धन कहां प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रभु, तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। अध्याय 14 पद 12। तब यहोवा ने कूशियों को, ये ध्यान देने योग्य है, परमेश्वर ने उन्हें आसा के सामने से भगा दिया। अध्याय 14 पद 12 से लेकर 15 तक। और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए, और आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया, और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए, और यहूदी आसा की सेना बहुत सा लूट ले गए, और उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया, और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया, क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। फिर पशु शालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूटकर यरूशलेम को लौटे।